शांति 22 जून 2025 आज की साकार अव्यक्त मुरली। रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें सिर्फ गूगल मीट पर। जो भी भाई बहने गूगल मीट के लिंक पर जुड़ सकते हैं वही केवल रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़, सुन और मंथन कर सकते, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का आदेश है कि केवल गूगल मीट पर ही या जूम पर या टेलीग्राम ऐप पर आप मीटिंग कर सकते हैं, क्लास सुना सकते हैं वीडियो में, बाकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वीडियो रिकॉर्ड करके भेज नहीं सकते, चाहे व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से या यूट्यूब पर रिकॉर्ड करके भेज नहीं सकते, केवल ऑडियो भेज सकते। इसी आदेश का पालन करते हुए केवल आप गूगल मीट पर ही हम ये मुरली चलाते हैं, आप गूगल मीट पर ही जुड़ सकते। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई होती है तो आप इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं उस पर मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक प्राप्त कर सकते हैं और नहीं तो ऑडियो से ही अपना काम चला सकते। ऑडियो व्हाट्सएप के द्वारा और टेलीग्राम के द्वारा जो भी ग्रुप बने हुए हैं उन सब में भेजी जाती है। आपको यदि नहीं मिल रही है तो आप उसमें भेज सकते। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, जो भी हमारी डायरेक्शन माउंट आबू से है हमने उसी के अनुसार करना, क्योंकि हम इस वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, भेज नहीं सकते। इसलिए आप भी साथी सहयोगी जैसे बन सकते हैं बने, क्योंकि आपके सहयोग से हमें फायदा है और आपका सहयोग हम सबको चाहिए। तो सभी मुरली मंथन में जो भी साथी व सहयोगी बनना चाहें तो गूगल मीट पर ही जुड़ सकते हैं, इसे हम यूट्यूब पर भी नहीं डाल सकते। इसे कोई भी किसी भी प्रकार से रिकॉर्ड करके नहीं भेज सकता, इसलिए प्लीज सभी सहयोग देंगे और इसको एंजॉय करेंगे, हम सबको सहयोग देंगे। इसकी ऑडियो आपके पास कौन सा अच्छा, आज की अव्यक्त मुरली का विषय अब स्नेह और सहयोग की रूप रेखा स्टेज पर लाओ। अब स्नेह और सहयोग की, स्नेह एक होता है देना, एक होता है स्नेह लेना और दूसरा है सहयोग। तो सहयोग भी दोनों होते हैं, लेना भी और देना। स्नेह और सहयोग, लेना और देना की रूपरेखा क्या है वो स्टेज पर लाओ। हर एक तोते को गुण और शक्तियों की गिफ्ट, हर एक को क्या करना है, गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। हर एक अपने गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। अब हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये बाबा ने मुरली चलाई थी 15 दिसंबर 2005। अब हमें सबसे पहले तो होता क्या है स्नेह और सहयोग कौन बताएगा, फिर हम उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। स्नेह सहयोग क्या होता है कौन बताएगा, स्नेह सहयोग क्या होता है कोई बताएगा। बाबा से प्यार करना, हमें आपस में तो प्यार नहीं करना, बाबा से प्यार से। सहयोग किसको देना है? और लेना किससे है?
बाबा से।
लेना बाबा से है, देना आत्माओं को। ठीक है, और कोई? और कोई बोलना चाहता है? कन्हे और सहयोग, ये दोनों पहले तो हमें क्लियर अपने बुद्धि में सबको समझ में आ रहा होगा। एक होता है रूहानी और दूसरा होता है जिस्मानी। हमने अपनी बुद्धि में, क्योंकि हम सवेरे सवेरे बाबा के पास मुरली सुनने के लिए बैठे हैं, तो नेचुरल हमें कौन सा रूहानी रूहानी ही सुने और सहयोग देने व लेने की ही बात करनी होगी, जिस्मानी की नहीं। ये बात हमें सबसे पहले अपनी बुद्धि में समझा देनी है कि हमने केवल और केवल रूहानी स्नेह और सहयोग की रूपरेखा तैयार करनी। तो रूहानी स्नेह और सहयोग क्या हो सकता है? रूहानी स्नेह व सहयोग क्या हो सकता है? लेने और देने दोनों के लिए। क्या हम रूहानी स्नेह करेंगे, क्या सहयोग देंगे? स्नेह क्या है और सहयोग क्या है? एक तो हमारा ये है, हमारा अपने प्रति स्नेह, अपने प्रति स्नेह कि हम बाबा की श्रीमत पर अपने आप को समझाएं और उसके जो अनुभव हैं वो अनुभव हम सबको दें, उनका अनुभव हम सबको दे कि हमने कैसे सफलता प्राप्त की। बाबा की श्रीमत को सुनकर प्रैक्टिकल करके हमने कैसे सफलता प्राप्त की, ये अनुभव दूसरों को सुनाना, ये है सहयोग देना। और अपने आप में बाबा की श्रीमत को धारण करना, ये है हमारा दोनों अपने आप से स्नेह करना, अपने आप से स्नेह करना। और बाबा से हमें स्नेह है वो क्या होगा? बाबा की श्रीमत पर चलना, ये है हमारा बाबा से स्नेह और अपने आप से स्नेह। बाबा हमें स्नेह करते हैं कि वो हमें क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। ये बाबा का हमारे प्रति स्नेह है। अब हमारा भाई बहनों के प्रति प्यार वो कब होगा? जब हम केवल शुभ भावना, शुभ कामना रखते, उनकी कल्याण का भाव विचार रखते, हम उनको बाबा का ज्ञान सुनाते हैं, बाबा का ज्ञान सुनाते हैं, उनके अनुभव हमारे पास है, वो हम अनुभव जो बाबा से हमने प्राप्त किया है, ज्ञान और प्राप्त करने के अनुभव जो हम उनको देते हैं, वही उनके प्रति हमारा प्यार है, हमारा सहयोग है। प्यार भी है और सहयोग भी है। हम हर आत्मा का कल्याण करना चाहते, कोई भी आत्मा हो, बिना किसी भेदभाव के। किसी भी प्रकार का यदि हमारे पास भेदभाव है तो हम जरूर कहीं ना कहीं प्यार करने में कमी कर रहे, कहीं ना कहीं जरूर प्यार करने में कमी कर रहे हैं। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, प्यार करना और सहयोग करना। अब दूसरे आत्माओं से, बाबा से तो स्नेह और सहयोग यही है कि बाबा ने हमें श्रीमत देनी है। अब अन्य आत्माएं भी अपना यदि स्नेह सहयोग देती हैं, केवल रूहानी ज्ञान को धारण करने में, रूहानी उन्नति करने में हमें सहयोग देती हैं, स्नेह करती हैं, तो वे भी हम ले सकते हैं। परंतु जिस्मानी नहीं, परंतु कोई भी जिस्मानी स्नेह व सहयोग हमारी इस रूपरेखा में कहीं भी नहीं आता। पर ये बात हम अपने जीवन में धारण करके स्टेज पर आना माना इस जीवन में चलना, चाहे कोई मेरे पास है या नहीं है, मैं अकेला हूँ या सबके बीच में हूँ, मेरी रूपरेखा यही है कि मैंने सबको स्नेह देना है, सहयोग देना है, ज्ञान देना है, और ज्ञान का जो मैंने प्राप्ति का अनुभव किया है वो लेना और देना, बाबा के साथ भी और सर्व आत्माओं के साथ। किसी भी आत्मा के साथ कोई मैंने जिस्मानी लेन देन का नहीं रखना, मैंने नहीं रखना, ये हमने अपने ऊपर ध्यान रखना, ये है रूपरेखा। तब स्टेज पर लाओ, स्टेज पर क्या लेके आनी है, स्नेह और सहयोग की रूपरेखा, हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो, हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। अब हमें समझ में आया कि कौन सा गुण और कौन सी शक्ति हमने अपने जीवन में धारण करके प्रैक्टिकल अपने आप में ले आए हैं, जो भी हमारे संबंध संपर्क में आए उसे ये फ्री गिफ्ट मिल जाए कि हमने भी इस गुण को अपने जीवन में धारण करना है, हमने भी इनके अंदर देखो कितनी स्नेह है, कितनी सहन शक्ति है, कितनी धैर्यता है, कितनी हर्षित मुक्ता है, कितनी मधुरता है, ये गुण मेरे में भी होना चाहिए। मेरे प्रैक्टिकल व्यवहार को देखकर वो अपने आप में फ्री में धारण कर लो, मुझे कुछ भी नहीं करना है, मेरे संपर्क में आए और उन गुणों और शक्तियों को अपने जीवन में धारण करे, ये है गिफ्ट। उनको कुछ करना ना पड़े, बस उनको लगे मुझे भी ऐसे करना है, बस करना है मुझे, उन्हें तो ये भी करना पड़े कि मुझे क्या करना पड़े, विधि बताओ मैं कैसे करूं, मैं आत्मा समझूं, मैं ये करूं, मैं ज्ञान सुनूं, मैं मुरली सुनूं, नहीं। गिफ्ट का मतलब है उन्हें कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़े, आपको देखते ही समझ जाए ये जैसे करते हैं व्यवहार में मुझे भी ऐसे करना, मेरे गुण और शक्तियां मेरे जीवन में इतना प्रैक्टिकल हो कि वो उसको सहज रीति से धारण कर, बस ये है गिफ्ट। समझ में आ गया होगा आज की मुरली का सारा सार। अब हम मुरली की तरफ चलेंगे। आज परमात्मा बाप अपने चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे। ये परमात्म प्यार विश्व में कोटियों में से कोई और कोयों में से भी कोई, किसी किसी को ही ये प्राप्त होता है। ये परमात्म प्यार निस्वार्थ प्यार, ये परमात्म प्यार कैसा प्यार है, निस्वार्थ प्यार, ये परमात्म प्यार निस्वार्थ प्यार है। क्यों ये निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि एक परम आत्मा पिता ही निराकार, क्योंकि एक परमात्मा पिता ही निराकार निरहंकारी है, एक तो निराकार है और दूसरा निरहंकारी है। मनुष्य आत्मा शरीरधारी होने के कारण कोई ना कोई स्वार्थ में आ ही जाती है। समझ में आया, निरहंकारी है मनुष्य आत्मा शरीरधारी होने के कारण, ये शरीर की मुसीबत है, शरीरधारी होने के कारण कोई ना कोई स्वार्थ में आ जाती है। ये बहन मेरे को रोज आना चाहे खिलाती है ना, बहुत उसकी शायद बहुत कोई भी मतलब संसारिक सुविधाएं किसी से हमें मिलती हैं तो वो हमारा स्वार्थ बन जाता है। हालांकि स्वार्थ शब्द का देह अर्थ है, यहाँ स्वार्थ का अर्थ हम क्या लेंगे, देह अर्थ, क्योंकि शरीर समझकर कोई भी हम स्वार्थ लेते हैं वो स्वार्थ आत्मा के लिए नहीं है, वो देह के लिए, क्योंकि आप प्रचलित है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। देह समझ कर स्वार्थ का अर्थ होता है देह अर्थ, और आत्मा समझ कर स्वार्थ का अर्थ होता है आत्मा के लिए। ये बात बहुत अच्छी तरह बुद्धि में रखनी है। ये है आधार, समझ क्या रहे हैं, मैं अपने आप को आत्मा समझ रहा हूं या देह समझ रहा, ये दो बातों को समझ कर ही स्वार्थ का सही अर्थ लिया जाता है। नहीं तो स्वार्थ, हाँ जी, आत्मा का स्वार्थ होता है आत्मा के लिए, मैंने वो चीजें लेनी है जिससे मेरी मुझ आत्मा में सुधार आए, मुझ आत्मा में उन्नति आए, मैं आत्मा परमात्मा के और नजदीक जाऊं, मैं और परमात्मा के समान बन रही हूं, तो वो है स्वार्थ। मैं कोई भी कर्म कर रही हूं, मैं कोई भी उपेक्षा किसी से करता हूं, वो मुझ आत्मा की उन्नति के लिए है, तो वो है स्वार्थ। और यदि देह के सुख के लिए है वो है देहार्थ, बोलेंगे तो स्वार्थ, परंतु होगा देह अर्थ, क्योंकि हमें जो भी संसारिक सुविधाएं हमने किसी से लेने के लिए सोचा है या कोई हमें दे रहा है तो देह अर्थ है। मैं यदि किसी को सहयोग इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो मेरे देह के लिए सुविधाएं दे, तो वो स्वार्थ का अर्थ देह अर्थ हो जाए। और जहां मैं ये सोच रहा हूं कि ये जो है ना क्या कहते हैं आत्मा की उन्नति के लिए मेरा सहयोगी बने, अपने अनुभव दे, कैसे इसको ज्ञान मिला समझाए, तो वो है मेरा आत्मा के लिए स्वार्थ। आत्मा को तो सिर्फ क्या चाहिए, चरती कला, कोई भी मेरी चरती कला में सहयोगी है तो, या चाहे वो मेरे अपने बोल हो, चाहे मेरे वो अपने कर्म हो, वो स्वार्थ, चाहे किसी और का सहयोग हो, वो स्वार्थ है। जैसे आप समझ ले, आपका ये सोचना क्या भाई जी से मुली सुने, तो मतलब ये आपका स्वार्थ है, क्योंकि आत्म उत्थान के लिए बात हो रहा है, परंतु आप मुरली ये सुन रहे हैं, सुन ये ही मुरली रहे हैं, परंतु ये मैं मुरली दूसरों को सुना करके मेरी को अच्छी जो है ना पोजिशन मिलेगी, अच्छा पद मिलेगा, अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा, अच्छा मान मिलेगा, इसलिए आप यदि दूसरों को मुरली सुनाते हैं तो वो स्वार्थ की जगह क्या हो जाएगा, मैं बोलूंगा तो स्वार्थ, परंतु होगा किसके लिए, देह के लिए, मुरली एक है। यदि मैं नाम मान शान के लिए, क्योंकि मैं देह समझ करके ले रहा हूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, देहार्थ। मैं मुरली को पढ़ रहा हूं आत्मा की उन्नति के लिए, तो वो है स्वार्थ। एक ही मुरली से आप दोनों मतलब समझ सकते। यदि वो आत्मा नाम मान शान के लिए करती है तो, कि मेरे को सारे कहेंगे वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो सारे मुझे बहुत अच्छा तो कह देंगे, परंतु वो फिर अच्छा सुन करके मैं खुश हुआ तो क्या हुआ, देर वो स्वार्थ आत्मा के लिए नहीं हुआ, क्योंकि वो मुझे चढ़ाने के लिए नहीं हुआ, मुझे उन्नति के लिए नहीं हुआ। मैं उससे कैसे लेता हूँ, ये मेरे लेने पर भी देने पर भी, ठीक है। परमात्मा बाप ही आकर बच्चों को ऐसा निस्वार्थ प्यार देते हैं, परमात्मा में कोई स्वार्थ नहीं, परमात्मा का कोई शरीर है ही नहीं, वो हमारे से एक पैसा नहीं लेता, एक पैसे की सेवा नहीं लेता, शरीर कोई कुछ वो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वो हर वक्त इस स्मृति में है कि मैं तो आत्मा। वो संसार के हमारे से कभी भी उसका हमें कहता है तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन, बस वो कभी ये नहीं कहता मेरे मुंह में भी डाल दो एक गुलाब जामुन, ब्रह्मा मुंह के मुंह में डाल लो मैं खा लू, मैं टेस्ट कर लू मीठा होता है कैसा होता है, कितना मीठा डाला है, मतलब उसको कभी संकल्प भी नहीं आता मतलब स्वार्थ का। इसलिए वो ही केवल एक है जो निस्वार्थ है, बाकी दुनिया में कोई निस्वार्थी नहीं, कोई निस्वार्थी नहीं। प्यार देते हैं परम आत्मा, प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। परमात्म प्यार, परमात्मा को जो प्यार है वो ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार, वही हमें आत्म उन्नति की तरफ ले जाता है। परमात्मा का जो स्नेह है, परमात्मा का जो प्यार है, वो हमें आत्म उन्नति की तरफ ले जाता है। ब्राह्मण जीवन का ये दान है। जब तक हमें परमात्म प्यार मिल रहा है तब तक हम ब्राह्मण जीवन में हैं। परमात्म प्यार की पालना में चल रहे हैं तब तक हमारा ब्राह्मण जीवन है, नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। अगर ब्राह्मण जीवन में परमात्म प्यार का अनुभव कम है तो प्यार के बिना जीवन रमणीक नहीं, सूखा हो जाएगा, सूखा जीवन हो जाएगा। परमात्म प्यार ही जीवन में सदा साथ भी देता है और साथी बन सदा सहयोगी रहता। परमात्म प्यार साथ देता है और सहयोगी बनता है। साथ कैसे देता है और सहयोगी कैसे बनता है, परमात्म प्यार का साथ हमें कैसे मिलता है, परमात्म प्यार का साथ हमें कैसे मिलता है, इस बात को भी हमें बहुत अच्छी तरह से समझना। परमात्म प्यार का साथ पहली बात के परमात्मा के पास बैठकर हम परमात्मा के प्यार को ले रहे हैं, अर्थात मुरली को पढ़ना, मुरली को सुनना, ये है परमात्मा को अपना साथी बनाना। अब मुरली नहीं सुन रहे हैं, अब हम परमात्मा की डायरेक्शन पर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। उसके उनकी डायरेक्शन पर हम अपने जीवन को व्यवहार कुशल बना रहे हैं, ये है परमात्मा के साथ। तो अब नहीं है परमात्मा का की बातें जो हैं, अब वो मेरा संस्कार बन गए हैं, तो हमें उसका सहयोग मिल रहा है। जब हमें परमात्मा की किसी बात की अपने जीवन में जरूरत महसूस होती है, हम उस जरूरत को अपने जीवन में उस समय प्रयोग करते हैं कि बाबा ने इस काम को करने के लिए ये डायरेक्शन दिया था, ये सहयोग है, ये सहयोग है। साथ और सहयोग में अंतर आप समझ गए होंगे। जिस समय हमें भोजन मिल रहा है उस समय साथ है, अब हमने मेहनत करके उस भोजन को चबा चबा करके अपना खून बना लिया है, ये सहयोग। यदि हम चबाएंगे नहीं वो हमारा खून नहीं बनेगा। भोजन पराया था, हमने उस भोजन को चबाया, अपना खून बनाया, तो वो हमारा शरीर का अंग बन गया। तो ये अंग हमने खुद बनाया, ये परमात्मा की डायरेक्शन का हमें सहयोग मिला। क्लियर हुआ होगा सहयोग और स्नेह। किसी को कोई बात कुछ नहीं हो तो देखो ये स्नेह और सहयोग कैसे होता है परमात्मा का। वहां सब कुछ बहुत सहज और सरल हो जाता, मेहनत का अनुभव ही नहीं होता। बाबा ने बता दिया था, हमें समझ में आ गया था, और दिन में जब हम काम कर रहे थे, जीवन में प्रैक्टिकल समस्याएं जब आई तो हमने उसको बड़े सहज रीति से क्या कर सकते हैं, देख व सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये अनुभव हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना अनुभव है ना। परमात्म प्यार कोई भी व्यक्ति व साधनों की आकर्षण में नहीं आता। फिर जो परमात्म प्यारे हैं, जिनको परमात्मा से प्यार हो गया है, अब वो बताओ संसार की किसी आत्मा को प्यार कर सकता है, किसी आत्मा का कहना मान सकता है? यदि वो संसार की किसी आत्मा का कहना मान रहा है तो वो मजबूर है, वो मजबूत नहीं है, वो मजबूर है, वो मजबूत नहीं है। ये बात समझते हैं ना। बाबा कहते मजबूत बनो मजबूर नहीं। जो परमात्मा से प्यार करेगा परमात्मा सारे संबंधों का प्यार इसी समय देने के लिए तैयार बैठा है, 24 घंटे तैयार बैठा है। सारे संबंधों का रस मेरे से लो, माँ चाहिए तो मेरे पास आओ, बाप चाहिए तो मेरे पास आओ, बच्चा चाहिए तो मेरे पास आओ, पति चाहिए तो मेरे पास आओ, पत्नी चाहिए तो मेरे पास। कुछ भी संसार का कोई भी रिश्तेदार की आपको जरूरत महसूस हो रही है, आप मेरे पास। परंतु एक बात याद रख के आना, क्या याद रख के आना, चाहे रिश्ता तुम मेरे साथ कोई भी बना लो, कहना तुम ही मेरा मानोगे, मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा। ठीक है, ये मंजूर हो तो सारे रिश्ते निभाने के लिए बाबा हाजिर बैठा, सारे रिश्तों का आनंद लेने के लिए आप तैयार हो गए, कहना हमें मान। परमात्म प्यार कोई भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति व साधन, अब हमें संसार की कोई चीज की जरूरत नहीं, कोई चीज की जरूरत नहीं, हमें कोई भी चीज आकर्षित नहीं कर सकता, इसके बिना कैसे होगा। ये नेट चला गया, अब मैं क्या कर सकता, ये लैपटॉप चला गया, मैं क्या कर सकता, ये मोबाइल खराब हो गया है, मैं क्या कर सकता, तुम कुछ नहीं कर, तुम्हें करने की जरूरत ही क्या, तुम्हें करने की जरूरत ही क्या है। ड्रामा में तुम्हें अपने रोल के मुताबिक वो साधन, वो सुविधाएं प्रयोग करने के लिए मिलेगी जो आपने करनी है। जब आपने प्रयोग नहीं करना, वो साधन, वो सुविधाएं आपसे छीन ली जाएगी। आप अपने आप को एकदम निश्चिंत रहे, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करें, और जो चीज आपको प्रयोग करनी है, वो साधन, वो सुविधाएं आपके पास आ जाएंगी। आप अपने आप को किसी भी हालत में मजबूर महसूस नहीं करें। पेपर तो होंगे ना, हमेशा मजबूत रहेंगे। ठीक है, आकर्षण नहीं हो सकता कोई भी साधन, कोई भी व्यक्ति, क्योंकि परमात्म आकर्षण, परमात्म प्यार ऐसा अनुभव कराता है जो सदा प्यार के कारण, सदा प्यार के कारण ऐसा अनुभव कराता जो सदा प्यार के कारण लवलीन रहते हैं, जिसको लोगों ने परमात्मा में लीन होना समझा। यहां भी समझने वाली बात है, एक शब्द है लवलीन और दूसरा शब्द है लीन, परमात्मा में लीन होना। आप किसी से प्यार करते हो तो क्या कहा जाता है, ये हमेशा उसी में फंसा पड़ा है या फंसी पड़ी है, ये है प्यार की ये कहा जाने वाला बात। इसको तो कुछ और सोचता ही नहीं, सारा दिन एक ही बस। तो ये है, अब ना तो वो उसमें फंसा पड़ा है, ना वो उसमें फंसी पड़ी है, ये केवल और केवल लव में लीन है। अब परमात्मा भी में हम क्या फंसना है, ना तो हम परमात्मा में घुस सकते, ना परमात्मा हमारे में घुस सकता, पर तो हम परमात्मा प्यार में परमात्मा का कहना मान रहे हैं। ये सब ये होता है वास्तव में उसके प्यार में लवली। परमात्मा आकर हम आत्माओं को इतनी उन्नति दे रहे हैं, इतनी तरक्की कर रहे हैं, हमें तमो प्रधान से सत्व प्रधान बना रहे हैं। बताओ आप उससे प्यार ना करे, उन गिराने वालों से प्यार करे। वास्तव में परमात्मा का कहना मानना प्यार प्यार करना है, परमात्मा के लव में, परमात्मा जो हमें प्यार कर रहे हैं, अब हम उसमें लीन हैं, अब हम उसी के अनुसार चल रहे हैं। तो वास्तव में था परमात्मा में लव लीन होना, और उन्होंने कर दिया, परमात्मा में लीन हो गया, आत्मा परमात्मा में समा गई, बड़ा मतलब बदल गया। उन्होंने समझ लिया आत्मा और परमात्मा तो एक है, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भी कर पानी, पूजा कुंभ जल जल ही समाना, एक कथा ज्ञानी। बड़ा आत्मा जो थी वो एक शरीर में, घड़े में आ गई, अब वो घर ये शरीर टूट गया तो आत्मा जाके वापिस पानी में मिल गई, वापिस परमात्मा में जाकर ले समा गई। अब उन्होंने समझा बस आत्मा जाती है और परमात्मा में समा जाती है। इस प्रकार से जैसे घड़े का पानी, आत्मा घड़े में चली गई थी, पानी घड़े में चला गया था, अलग हो गया था। अब जब घड़ा टूट गया तो पानी जाकर के वापिस समुद्र में मिल गया। इसी प्रकार से आत्मा इस शरीर में आ गई, ऐसे शरीर टूट गया, इसको हमने जला दिया, अब ये आत्मा जाके परमात्मा में लीन हो गई, मतलब ही बदल गया। कहां से कहां कैसे गलती हुई ये हमें समझ में आ गया। ये गलती हमें समझ में आई है, इसका प्रयोग जब हम दूसरों को समझाने में करेंगे तब बाबा हमें सर्टिफिकेट देगा कि हाँ ठीक है, अब तुम्हें ये बात समझ में आ गई। आपने भी बाबा से सर्टिफिकेट लेना है तो आपने भी दूसरों को समझाना है। लीन, परमात्मा में लीन होना और परमात्म लव में लीन होना, इसमें क्या अंतर है? ये बात हमारा फर्ज है कि हमें समझ में आ गया है तो हम सबको समझाएं। यदि आपको अभी समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हैं। परमात्मा में लीन नहीं होता लेकिन परमात्म प्यार में लव लीन हो जाता है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते हैं, परमात्म प्यारे तो सभी बने हैं, लेकिन लेकिन एक है लवली बच्चे, दूसरे हैं लवलीन बच्चे। एक है लवली बच्चे और दूसरे हैं लवलीन बच्चे। कोई अंतर समझा सकता है? लवली बच्चे अपने आप में बड़े प्यारे लगे, बहुत अच्छे लगे, कोई बहुत सुंदर है, प्यारा है, मीठी बोली बोलता है, मीठा चलता है, सबको सुख देता है, वो है लवली बच्चे। और लवली जो दीवाना हो गया, दुनिया वालों ने तो दुनिया में भी प्यार में दीवाना जैसे लैला मजनू को दिखाया और उसने भी यही कहा कि मैं तो अपने प्यार में इतना होश नहीं था और तुम तो खुदा के बंदे बंदगी कर रहे थे और तुम्हें सब होश था, मुझे कुछ होश नहीं था। मतलब कुछ होश ही जा रहे दुनिया का चारों तरफ, मैं परमात्मा की याद में परमात्मा की श्रीमत पर चलने में इतना मस्त हो जाऊं मुझे किसी से देखना ना पड़े, किसी को पूछना ना पड़े। लवली माना प्यारा लगना। आप प्यारे लगते हो, बहुत सेवा करते हो, बहुत अच्छे हो, बहुत भंडारी भी देते हो, आप प्यारे लग रहे हो, परंतु आप परमात्म प्यार में लीन हो, ये अंतर देखना। लव लीन होना परमात्म प्यार में डूबे हुए होना, और लवली आप सेवा बहुत कर रहे हो, मुरलियां सुना रहे हो, आप सबको प्यारे लग रहे हो, लवली हो, परंतु आप परमात्म प्यार में कितने लीन हो, अंतर समझ में आ गया होगा। वो है लवली, परमात्मा के प्यार में डूबा हुआ बस। और दूसरा है नाम मान शान के लिए मुरली सुना रहा है, मेरे पास ज्यादा क्या है, सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स बहुत ज्यादा है, मेरे पास मुरली सुनने वाले बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं वो मैं नाम मान शान के लिए कर रहा हूँ या मैं परमात्मा के लव में डूबा हुआ। ये अंतर अपने आप में हमको समझना। तो अपने आप से पूछो, लवली तो सभी हैं लेकिन लवलीन कहाँ तक रहते हैं? बाबा की बड़ी की समझ रहे होंगे। लवलीन बच्चों की निशानी क्या है, वो निशानी देखो, वे सदा परमात्म फरमान में सहज चलते, परमात्म फरमान में क्या करते हैं, सहज चलते हैं, फरमान में भी रहते और देह धान के कुर्बान भी रहते, क्योंकि प्यार में कुर्बान होना मुश्किल नहीं, प्यार में कुर्बान होना मुश्किल नहीं है। सबसे पहला फरमान है योगी भव, सबसे पहला फरमान है योगी भव, पवित्र भव। योगी बनो, पवित्र बनो, बाप का बच्चों से प्यार होने के कारण बाप बच्चों को मेहनत करते देख नहीं सकते, बाप बच्चों को मेहनत करते देख नहीं सकते, क्योंकि बाप जानते हैं 63 जन्म, क्योंकि बाप जानते हैं 63 जन्म बहुत मेहनत की। अभी ये अलौकिक जन्म मेहनत से मुक्त हो अति इंद्रिय सुख की मौज मनाने का है। तो मौज मना रहे हो कि मेहनत करनी पड़ती है? बताओ, मौज मना रहे हो कि मेहनत करनी पड़ती है? प्यार में फरमान पर चलना मेहनत नहीं लगती, प्यार में फरमान पर चलना मेहनत नहीं लगती। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो प्यार की परसेंटेज कम है, तो प्यार की परसेंटेज कम है, क्योंकि जितनी मेहनत आपको महसूस हो रही है तो समझ लो उतना मुझे बाबा से प्यार कम। आप अपनी उन्नति करने में कोई मेहनत नहीं महसूस कर रहे हो, भीत बन गए हो, नहीं, मेहनत आपको लगती नहीं। बड़ी खुशी खुशी आप उड़ते रहते हो, भागते रहते हो, उमंग उत्साह में रहते हो, आपके पैर धरती पर नहीं रहते हो, आप फरिश्ते बन गए हो, तो समझो कि आप प्यार में पूरे, जितना भारीपन लगता है तो उतना परसेंटेज आपकी प्यार की कम। तो बाबा कहते हो कि क्या है, कहां ना कहां प्यार में कुछ ना कुछ लीकेज है। बीच में कभी कभी बेटा आ जाता है, पति आ जाता है, सास आ जाती है, ननद आ जाती है, माँ आ जाती है, कोई भी आ जाता है, थोड़ी देर उसके साथ भी तो बैठना चाहिए ना, इनके साथ भी तो रहना है ना। तो ये लीकेज जो है आपको भारी कराएगी, क्या करूं, बच्चों के लिए तो करना पड़ेगा ना, अब बीमार माँ है इसके लिए तो करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा क्यों भाई, जो करना है वो खुशी से करना है ना, भारी होकर के नहीं। कोई फीलिंग नहीं आए, फीलिंग आएगी तो लीकेज, बाबा के प्यार से लीकेज। बताओ, हम दुनिया को भी नहीं छोड़ सकते, ऐसा प्यार का दीवाना बनाता है, उनको भी करो मेरे को भी करो। दो बातों की लीकेज मेहनत कराती है, पहुंचे वो दो बातें, एक पुराने संसार के संस्कार और पुराण आकर्षण और संसार में संबंध पदार्थ सब आ जाते, और दूसरा पुराने संस्कार की आदत, क्या करूं मेरी बहुत पुरानी आदत है, ये तो मरने के साथ जाएगी। ये पुराना संसार और पुराने संस्कार अपनी तरफ आकर्षित कर देते हैं तो परमात्म प्यार में परसेंटेज हो जाती है। चेक करो इन दो लीकेज से मुक्त हैं, याद करो आप आत्मा के अनादि संस्कार और आदि संस्कार क्या थे। अनादि संस्कार क्या थे आप आत्मा के, और आदि संस्कार क्या थे, और अभी अंत के ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या हैं। अनादि भी हैं और आदि भी, और अंत में भी हमारे श्रेष्ठ संस्कार, क्योंकि आदि और अंत तो हमारा एक ही होगा ना, जिन संस्कारों के साथ हम इस संसार में आए थे अंत में वो संस्कार मेरे जीवन में होंगे, वो संस्कार मेरे जीवन में होंगे। ये पुराने संस्कार मध्य के, ये जो मेरे अंदर गंदे संस्कार आए हैं ये मेरे बीच में आए हैं, और इनको आने जाने से पहले क्या करना है, खत्म भी करके जाना है, क्योंकि आदि जैसे हुई थी अंत भी वैसे होगा ना। ये संस्कार जो पुराने मेरे जीवन में बीच में आए हैं, गंदे संस्कार, दे अभिमान के संस्कार, ये ना अनादि हैं, ना आदि हैं, और ना अंत के। कितना कंसेप्ट क्लियर करके हमें समझा रहे हैं, ना अनादि हैं ये संस्कार, हम आत्मा में भी नहीं थे, जब हम इस संसार में पाठ बजाने आए थे तब भी नहीं है, और जब हम घर जाएंगे तब तब होंगे। जब आप घर जाओगे तो होंगे क्या? बोलो कुछ तो बोलो। हाँ जी, नहीं होंगे, क्योंकि हमने उतना बन के जाना है। बाबा हमारा कितना अपना सारी मेहनत का राज कितना क्लियर समझाते हैं, आप क्या रो कर बनो, आप क्या हंस कर बनो, खुशी से बनो, दुखी होके बनो, कैसे भी बनो, जैसे आए थे वैसे जाओ। ना तो उससे आप जरा सा ऊपर जा सकते हो, ना जरा सा नीचे आ सकते हो। नो चेंज। बाबा हर ज्ञान की बात को इतना एक्यूरेट देते हैं, लेकिन सभी का लक्ष्य क्या है? किसी भी बच्चे से पूछो तो एक ही उत्तर देते हैं, लक्ष्य है बाप समान बनने का। यही है ना? है तो हाथ उठाओ, बताते हैं। देखो इतनी प्यार करके, इतनी मेहनत करके, सिर खपाई करके सर्टिफिकेट भी लेता है अपना, कि मैंने कितना समझाया। लक्ष्य है पक्का या बीच बीच में बदली हो जाता है? तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि बाप और दादा दोनों के समान संस्कारों से संस्कार कौन से? बाप और दादा दोनों के समान संस्कार कौन से हैं? मतलब ब्रह्मा बाबा में और शिव बाबा में कौन कौन से संस्कार समान हैं? समान संस्कार, समान आदतें दोनों की कौन कौन सी है? अब बताओ। अब हम ये इस पर जाकर रिसर्च करें क्या? क्या चाहता है बाबा? है तो दोनों आत्माएं, उनके संस्कार मिलाओ, बैठ करके देखो कौन कौन से संस्कार दोनों के एक बराबर है। अभी तो पूरी रिसर्च का काम हो जाएगा। मिले भाई मेरे, मिलेंगे वो सारी बात आपकी, मैं समझ रहा हूँ। परंतु अब हमें इसके लिए ब्रह्मा बाबा के जीवन की, शिव बाबा के जीवन की, दोनों की पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी, थीसिस लिखने पड़ेंगे, तब जाकर पता लगेगा। अब हमने ब्रह्मा बाबा को कभी देखा नहीं, ब्रह्मा बाबा से कभी मिले नहीं, अब उनके बाकी लोग क्या क्या कहते हैं वो सारा सुने, तब जाकर के सोचे कि हाँ ये बातें बाबा में और शिव बाबा में एक है। पढ़ लेंगे जीवन कहानी, आधे अधूरी है वो भी। भाई अब कोई किसी दादी ने, किस दादी ने, किसने भी उसके बारे में जो अनुभव किया वो तो उनका है ना। सबका अनुभव तो हमारे पास नहीं है। अब कुछ का अनुभव जगदीश भाई जी ने लिख दिया, वही हमारे पास है। अब ना तो उनके साथ वाले दादियां रही, अब उनको पकड़ कर बैठे, क्योंकि अब हम कभी मधुबन में गए, जैसे अपने जीवन को हम बताए कि शुरू शुरू में दादियां बिल्कुल वेली होती थी, कोई काम नहीं होता था, वो बैठ करके हमें अपने अनुभव सुनाते। परंतु वो उस समय जो दादियां मधुबन में आई हुई है वो अपने अनुभव सुनाती थी ना। और जो दादियां उस समय मधुबन में नहीं आई, उनको हमने देखा नहीं, उनसे हमने कुछ सुना नहीं, तो हमें क्या पता। अब जगदीश भाई जी ने भी जिन्हें जिन्हें कुछ दादियों के अनुभव बाबा के जो हैं अच्छे अच्छे लगे वो लिख दिए, उनको हम पढ़ रहे हैं। तो सारे अनुभव तो हम नहीं पढ़ सकते ना। शिव बाबा के संस्कार तो शिव बाबा रोज बता रहा है। शिव बाबा तो हमारे सामने है, जितना हम काइस के बाबा के साथ 24 घंटे मुरली पढ़ सकते हैं, संस्कारों का पता लग जाएगा। परंतु वो हमारी कमी है, कितना हम शिव बाबा के साथ जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते। हम एक मुरली से काम चलाते हैं कि 10 मुरलियों से काम चलाते हैं, कितना अब हम कम टाइम में पढ़ते हैं वो हमारा पुरुषार्थ है। क्योंकि दादी जानकी तो अपना एग्जाम्पल सेट कर गई कि 12 बार मुरली पढ़नी है। अब हम वहां से एग्जाम्पल कैसे सेट करें वो तो हमें समझ में नहीं आ रहा अभी तक। चलो जितना कर सकते हैं करें। सदा बाप हर आत्मा के प्रति उदार चित रहे हैं। सदा बाप जो है आत्मा के प्रति उदार चित रहे, हर आत्मा के प्रति स्नेह और सम्मान स्वरूप में सहयोगी रहे। ऐसे स्वयं भी अपने को हर आत्मा के प्रति सहयोगी अनुभव करते हो। सहयोग दे तो सहयोगी बने नहीं, स्नेह दे तो स्नेही बने नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप हर बच्चे के प्रति सहयोगी बने स्नेही बने, ऐसे सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी। इसको कहा जाता है समान बनना। तो आज की मुरली का सार था उसकी कोई बाबा का आज देख रहा है। ब्रह्मा बाबा के बारे में इसके बाबा बताते बच्चे, ब्रह्मा बाबा स्नेही और सहयोगी कैसे बने, ऐसे तुम भी देखो। शिव बाबा भी स्नेही और सहयोगी है, ब्रह्मा बाबा भी स्नेही और सहयोगी है, और तुम अपने आप को देखो हम ऐसे हैं। अगर कोई भी बच्चे का संस्कार परिवर्तन करने में मेहनत करनी पड़ती है, कोई भी आदत अपनी बदलने में उसको बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। कैसे करूं नहीं भाई, मतलब जहां हमें नई नई सिर ऐसे 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 करना पड़ता है, तो वहां हा ना हा ना हा ना, तो वो मेहनत। तो उसका कारण क्या है? ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर अटेंशन रखा लेकिन मेहनत नहीं की। बाबा ने जो कहा है मुझे करना, मम्मा ने कितना क्लियर अटेंशन रखा, जो आदेश हुआ है मुझे करना। फिर चाहे कोई दुनिया का आके कुछ भी कहे, मुझे उसे बदलना नहीं। संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है लवली बने। क्यों मेहनत करनी पड़ती है? कि हम लवली तो बन जाते हैं परंतु लवलीन नहीं बनते। इसलिए बाबा कहते लवली नहीं बनो, लवलीन बनो। बाप दादा तो हर बच्चे को लवली बच्चे समझते हैं, जानते भी हैं, जन्म पत्री हर एक की जानते हैं, फिर भी क्या कहेंगे? लवली है। बाप दादा हर बच्चे को एक ही पढ़ाई, एक ही पालना, एक ही बार देते हैं, एक ही वरदान देते हैं, सदा सदा देते हैं। चाहे जानते भी हैं कि ये लास्ट नंबर है, फिर भी बाप दादा किसी भी बच्चे को अवगुण, बच्चे का अवगुण कमजोरी संकल्प में भी नहीं रखते। लाडला है, सिक्की लगा है, मीठा है, मीठा मीठा है, इसी दृष्टि से और वृत्ति से देखते हैं। क्योंकि बाप दादा जानते हैं इस वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि से कमजोर महावीर बन जाएगा। ऐसे ही अपने श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना शुभ कामना द्वारा किसी भी किसी का भी परिवर्तन कर सकते हैं। जब आपने चैलेंज किया है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके दिखाएंगे, तो क्या आत्माओं का परिवर्तन नहीं कर सकते हो? प्रकृति जीत बनते हो तो आत्मा आत्मा का की श्रेष्ठ भावना से कल्याण की कामना से परिवर्तन नहीं कर सकते। अभी नया वर्ष शुरू होने वाला है, नया वर्ष शुरू होने वाला है, तो नए वर्ष में सर्व बेहद के परिवार के बीच एक दो के प्रति अपनी शुभ भावना श्रेष्ठ कामना द्वारा हर एक दो के परिवर्तन करने में सहयोगी बने। चाहे कमजोर हैं, जानते हो इसके संस्कार में ये कमजोरी है, लेकिन आप स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा सहयोगी बनो। स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा सहयोगी बनो। एक दो को सहयोग का हाथ मिलाओ। इस सहयोग के हाथ मिलाने का दृश्य ऐसा बन जाएगा जैसे हाथ में हाथ, स्नेह का मिलाना, सहयोग का मिलाना माला बन जाए। शिक्षा नहीं दो, स्नेह भरा सहयोग दो। न्यारा नहीं बनो, किनारा नहीं चढ़ो। न्यारा भी नहीं बनो, किनारा भी नहीं। लाइन समझ रहे हैं? इन दोनों के अंदर भी कमाल है। हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, इससे मैं देखता नहीं, इसकी मैं बात ही नहीं करता, इससे मैं बोलता ही नहीं, ये किनारा करना नहीं है। आपने उसके साथ रहना है परंतु उससे न्यारा रहना। जितनी वो बाबा की बात माने उसकी मर्जी, ना माने उसकी मर्जी, मैंने बाबा का प्यार उसको देना है, परंतु मुझे उसका मुरीद नहीं बनना, उसका दीवाना नहीं बनना, उसका एहसानमंद नहीं बनना। اس سے نفرت نہیں کرنا. ہر ایک من کا منکے کے ساتھ سہیوگی ہے, سب مالا کا چتر ہے, دھاگا ایک ہے ہمارا, ہم کسی سے الگ نہیں ہو جائیں. اب وہ مالا اچھی لگے گی ٹوٹی ہوئی, میں اس کو دیکھتا ہی نہیں, ارے بھی وہ کمزور ہے, کوئی بات نہیں ہے, تو بابا کا بچہ نا, وہ پہلے نمبر پر نہیں ہے تو وہ دسے نمبر پر ہے, کوئی بات نہیں ہے, بیچ میں اور تو ہے نا. تو سبھی باپ دادا سے پوچھتے ہیں نئے سال میں کیا کرنا ہے, سندیش دینے کا کاریہ تو بہت کیا, کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. سندیش واہکوں کے سہیوگ اور سنیہ کی روپ ریکھا تیز پر لاؤ, مہادانی بنو, اپنے گنوں کا سہیوگی بنو, بناؤ ایسے اپنے گنوں کا ہے تو پرماتما کے گن, پرماتم گن, لیکن جو گن آپ نے اپنے جیون میں بنائے ہیں اس گن کی شکتی سے انہوں کی کمزوری دور کرو. یہ کر سکتے ہو بتاؤ, کر سکتے ہیں یا مشکل ہے ٹیچرس, بتاؤ کر سکتے ہیں یا کرنا ہی ہے, کیا بولیں گے, کرنا ہی ہے, کوئی کمزور نہیں رہے, کیونکہ کوتوں میں کوئی ہے نا, چاہے لاکھ دانا بھی ہے تو کوتوں میں کوئی, آپ کا ٹائٹل ہی ہے ماسٹر سرو شکتیوان. تو سرو شکتیوان کا کرتویہ کیا ہے, شکتی کی لین دین کرنا, شکتی کی لین دین کرنا, باپ دوارا ملا ہوا گن آپس میں لین دین کرو, یہی سہیوگ کی گفت ایک دو میں دو. نئے ورش میں ایک دو کو گفت دیتے ہیں نا, تو اس ورش میں ایک دو میں گنوں کی گفت دو. اگر کلیان کی بھاونا رکھیں گے تو جیسے بھاشن کر کے وانی دوارا سندیش دیتے ہو نا, ویسے اپنے کلیان کی بھاونا دوارا, کلیان کی ورتی دوارا, کلیان کے وایو منڈل دوارا یہ گنوں کی گفت دو, شکتیوں کی گفت دو. کمزور کو سہیوگ دینا یہ سمے پر گفت دینا ہے, گرے ہوئے کو گراؤ نہیں چڑھاؤ, اونچا چڑھاؤ, یہ ایسا ہے یہ ایسا نہیں, یہ پربھو پیار کے پاتر ہیں. اب پاتر کتنا لے گا, اس کا کتنا بڑا پاتر ہے, کتنا چھوٹا پاتر ہے, وہ تم مت دیکھو, تم اپنا طرف سے دو, جتنا اس کا پاتر ہوگا وہ لے گا. کسی کا پاس کٹورا ہے, کسی کے پاس لوٹا ہے, کسی کے پاس جگ ہے, کسی کے پاس پراٹ ہے, تو کسی کے پاس بالٹی ہے, کسی کے پاس ٹب ہے, بڑا ہر ایک کے پاس جتنا ہوگا وہ اتنا لے گا. آپ دیتے جاؤ نا, آپ کا کیا جا رہا ہے, بابا بھی آ کر بانٹتا ہے, جو جتنا لینا چاہتا ہے, جتنی جس کی سمرتھ ہے لے لے بھائی. کوئی آتما ہے, وشیش آتما, وجئی بننے والی آتما ہے, یہ درشٹی رکھو, ابھی ورتی درشٹی وایو منڈل چینج کرو, کچھ نوینتا کرنی چاہیے نا, کمزوری دیکھتے دیکھو نہیں. امنگ دو, سہیوگ دو, ایسا برامن سنگٹھن تیار کرو تو باپ دادا کیا کریں گے, باپ دادا وجے کی تالی بجائیں گے. کون تالی بجائے گا, باپ دادا. جیسے بچے کچھ اچھا سا کرتے ہیں تو ممی پاپا کیا کرتے ہیں, ویل ڈن, ویری گڈ, کلیپنگ کرنا شروع کرتے ہیں. یہ بابا ہماری طرح ویسے باتیں کر رہے ہیں نا, یہ ماں کے روپ میں یا باپ کے روپ میں, یہ آپ پہچان لینا, बाबा सारे रिश्ते लेके खड़ा रहता है, अब हमारी मर्जी है हम उसको पहचाने या ना पहचाने। आप भी बार बार तालियां बजाते हो ना, बच्चा खुद ही बजाता है तालियां, हमें मतलब ऐसे छोटा बच्चा बना रखा है, बुद्धू बना रखा है, हम इतने समझदार हैं, फिर भी बाबा हमारे साथ जो है ना वही वही खेल करता है। बाप दादा भी मुबारक हो, बधाई हो, ग्रीटिंग्स हो, उसकी भी तालियां बजाएगा, आप भी साथ में ताली बजाएंगे ना। अभी ताली बजाई तो अच्छा किया, लेकिन विश्व के आगे ताली बजे, आप अपने घर में तालियां बजा के मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हो, इससे काम नहीं चलेगा। विश्व के आगे ताली बजे, सच के मुख से ये आवाज निकले, हमारे इष्ट आ गए, हमारे इष्ट आ गए, हमारे पूज्य आ गए। लक्ष्य पक्का है ना, पक्का है लक्ष्य, करना ही है या देखेंगे, प्लान बनाएंगे, करना ही है। प्लान क्या, करना ही है, प्लान क्या बनाएंगे, करना ही है। अभी सभी इंतजार कर रहे हैं, अभी इन्हों का इंतजार समाप्त करो, प्रत्यक्ष होने का इंतजाम करो। देखो प्रकृति भी सब अभी कितनी तंग हो रही है, तो प्रकृति को भी शांत बना दो, आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो विश्व शांति स्वतः ही आएगी। अच्छा, आजकल विश्व में दो बातें विशेष चलती हैं, एक एक्सरसाइज और दूसरा भोजन के ऊपर अटेंशन। तो आप भी ये दोनों बातें करते हो, आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? शारीरिक एक्सरसाइज तो सब करते हैं, लेकिन मन की एक्सरसाइज, अभी अभी ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता, ये मनसा दिल का अभ्यास सदा करते रहो। और शुद्ध भोजन मन को शुद्ध संकल्प, शुद्ध भोजन क्या है? शुद्ध संकल्प। अगर व्यर्थ संकल्प, निगेटिव संकल्प चलता है तो ये मन को का अशुद्ध भोजन है। तो मन में शुद्ध, सदा शुद्ध संकल्प रहे, दोनों करना आता है। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में क्या है, मैं आत्मा, अभी अभी क्या बन गया फरिश्ता, और अभी अभी क्या बन गया देव, ये एक्सरसाइज करनी। जितना समय चाहो उतना समय शुद्ध संकल्प स्वरूप बन जाओ। अच्छा, चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा एक दो के सहयोगी बनने वाले बाप के सनेही और सहयोगी आत्माओं को सदा विजयी हैं, और विजय का झंडा विश्व के में फैलाना है। इस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने वाले विजयी बच्चों को सदा इस पुराने संसार और संस्कार के आकर्षण से परे रहने वाले बाप समान बच्चों को दिलाराम बाप का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। दादी जी से बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो, आपको देखकर सभी का को फरिश्ता लाइफ याद आती है, न्यारा और प्यारा, न्यारा और प्यारा। गुजरात के मुख्य 13 बहनों से, मुख्य 13 बहनें दीदियां जो ना आगे बैठी हैं, अच्छे महावीर हैं। महावीरों का काम है विजयी बन, विजयी बनाना। तो सभी अच्छी सेवा कर रहे हो ना, आगे भी सेवा होती रहेगी। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख खुश होते हैं। अच्छा, गुजरात में फैला रहे हैं, रहे हो, अच्छा फैला रहे हो, और भी आगे फैलाते रहेंगे। बाप दादा को सभी बच्चे आशाओं के दीपक लग रहे हैं, अच्छा है। संग संग भी अच्छा है, एक एक की विशेषता है। अच्छा, खुशी बांटने वाले। सरला दीदी पूछ रही है, दादी ने माला में किसको रखा है, आप क्या समझती हो? हम तो होंगे ही ना, ऐसी समझती हो? थोड़ा बहुत एक दो को सहयोग दे, और जो कुछ भी रहा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। सब बाप समान बनने वाले हैं ना, नवीनता क्या करें? सुनाया ना, एक एक सेंटर कम से कम एक वारिस को तैयार करे। तो इस वर्ष वे लेकर आना, 21 वारिस को लेके आना। ये शुरू करो, पहला नंबर आओ, सभी हाँ कर रहे हैं। वारिस की क्वालिफिकेशन जानते हो ना, वो सब बाबा के ही बनाएंगे ना, अपना तो नहीं बनाएंगे। मतलब उनको बाबा का बच्चा बनाना है, अपना मुरीद नहीं बनाना, वो आपका दीवाना हो जाए, दीदी 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 भाई जी नहीं। सिर्फ बाबा, अपना दीवाना नहीं बनाना, सिर्फ बाबा का दीवाना बनाना। गुजरात की ही सेवा है, गुजरात वाले ही मिलन मनाने आए हैं। गुजरात वाले जो भी चाहे आए हैं, चाहे सेवा में आए हैं, वो हाथ उठाओ। बहुत बहुत बच्चा अच्छा चांस लिया। गुजरात को बाप दादा कहते हैं, सिंधी में कहावत है, जो तुल पर वो दिल पर। ये लाइन किसको ना समझ में आई तो कुछ, जो तुल पर चूल्हा बोलते, तुल माना चूल्हा। पहले जो है ना, जो ये समझा जाता है, आज भी प्रैक्टिकल है, आप सभी समझ सकेंगे। जो चूल्हे पर एक साथ खाना खाते हैं, उनमें जो प्यार होता है, जिस दिन वो चूल्हा अलग हो जाता है, उनका प्यार भी कट जाता है। जो दिल पर वो दिल पर, तो सबसे नजदीक में नजदीक गुजरात है। जो नजदीक होता है ना, उसको कहा जाता है षड पथ पर। षड पंथ होता है बहुत करीब, षड पंथ है, ये पंथ नहीं है, ये जय की जगह छह होता है। षड पंथ, छोटी सी दूरी पर, पथ पंथ माना रास्ता, पथ पथ होता है, षड पथ होता है, ये कहीं स्पेलिंग में गलत है। थोड़ा बिल्कुल जो थोड़ी भाई, जैसे कोई नजदीक रहता है तो उसको बोलते हैं सिंधी में षड पंथ। बुलाओ और पहुंचे, पहुंच जाए। तो गुजरात वाले ऐसे एवर रेडी हैं, है ना, कभी भी बुलाएं आ जाओ तो आ जाएंगे। ऐसे है, परिवार को नहीं देखेंगे, क्या करेंगे, आ जाएंगे, एवर रेडी। अच्छा है, गुजरात साकार ब्रह्मा की प्रेरणा से स्थापन हुआ है। गुजरात ने गुजरात को निमंत्रण नहीं दिया, क्या है, गुजरात ने गुजरात को निमंत्रण नहीं दिया, ब्रह्मा बाप ने गुजरात को खोला। तो गुजरात के ऊपर विशेष ब्रह्मा बाप की नजर पड़ी हुई है और गुजरात ने पुरुषार्थ भी किया। ये कैसे कैसे समझ रहे हैं आप, क्योंकि जिस समय जो माउंट आबू है, जब माउंट आबू में पाकिस्तान से आए थे, तब ये माउंट आबू गुजरात में था। जब आजाद होने के बाद भी जब आए थे तो ये गुजरात में था, बाद में राजस्थान अलग स्टेट बना। उस समय राजस्थान अलग स्टेट नहीं था, तो राजा उनका जो बंटवारा जो हुआ, उसमें ये गुजरात से राजस्थान में आ गया, तो सरकार भी बदल गई। पुरुषार्थ भी किया है, सेंटर अच्छे खुले हैं। कितने सेंटर हैं, 300 सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र और 3000 गीता पाठशाला। अच्छा, सबसे ज्यादा सेंटर किस जोन के हैं, बंबई महाराष्ट्र के। अच्छा, महाराष्ट्र वाले आए हैं, आज नहीं आए। गुजरात वाले सेवा तो अच्छी कर रहे हैं, गुजरात का विस्तार भी अच्छा है। अभी क्या करना है, विस्तार तो है, विस्तार तो अच्छा किया है, अभी गुजरात वाले नंबर वन वारिस तैयार करें। कम से कम जो बड़े सेवा केंद्र है, जो पुराने वारिस हैं, वे तो हैं ही, लेकिन नया कोई वारिस निकालो। चलो एक एक तो निकालो, क्योंकि माला में मणके वही बनेंगे जो वारिस क्वालिटी होंगे। तो माला तो तैयार करना है ना, 16108 की भी माला बनी हुई है। अभी अगर बाप दादा बोले 108 की माला बनाओ, तो बना सकते हो, बन सकती है। दादियां बतावे, 108 की माला बन सकती है, दादी दादी जी ने कहा बन सकती है, तैयार है, 108 की माला तैयार हो गई है। हाँ बाबा तैयार है। अच्छा, लिख करके देना कौन है 108 की माला में, दिखाना तैयार है तो बहुत अच्छा, मुबारक। अच्छा 16000 की माला, आधे तक बनी है, आधा तो क्या उनसे भी ज्यादा बनी है, दादियों ने कहा। अच्छा है ना, देखो गुप्त रूप में बनी है और आपकी दादी ने देख ली है। अच्छा, अभी आपसे सभी पूछेंगे कि मेरा माला नाला में नाम है। अच्छा है, ऐसी शुभ भावना और शुभ उम्मीदें तैयार ही कर लेती हैं। अभी सभी ने सुना ना, अपने को चेक करना, मैं उस माला में एवर रेडी हूँ। अच्छा, और क्या करना है, और क्या करे बाबा भाई, कैड ग्रुप 8 पेशेंट का आया हुआ। अच्छा, ये भी आवाज फैलाने का साधन बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिकल सबूत देखते हैं ना, और बिना खर्चे के मेडिटेशन द्वारा ठीक हो जाना तो सबको बहुत अच्छा लगता है। अभी धीरे धीरे इसकी वृद्धि करते जाओ, सुना है कर रहे हैं और सफलता भी मिल रही है और भी मिलती रहेगी। बाकी बाप दादा इस कार्य के लिए निमित्त बनने वालों को मुबारक दे रहे हैं। ऑफिशियल गवर्नमेंट तक रिजल्ट पहुंच रही है और भी फैलाते रहेंगे तो मेडिटेशन का महत्व तो बढ़ता जाएगा। बाकी बाप दादा को ये विधि पसंद। अच्छा, वरदान, मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था, ऐसे अब मन का मौन रखो जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं, जैसे मुख से आवाज ना निकले, निकले वैसे व्यर्थ संकल्प ना आए, ये है मन का मौन। तो समय बच जाएगा। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी जो साधना कम और सिद्धि ज्यादा होगी। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे इस साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी। कितनी देर में? सेकंड में विधि प्राप्त होगी। स्लोगन, जो स्वयं समर्पित छुट्टी में रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। उनके आगे क्या होता है? समर्पित होता है। अगर इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अनेक प्रकार के व्यक्ति, वैभव अथवा अनेक प्रकार की वस्तुओं के संपर्क में आते आत्मिक भाव और अनासक्त भाव धारण करो। ये वैभव और वस्तुएं अनासक्त के आगे दासी के रूप में होंगी और आसक्त भाव वाले के आगे चुंबक की तरह फंसाने वाली होंगी। अच्छा, शक्ति और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। शांति। और इस प्रकार से गूगल मीट पर जुड़ने के लिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है या व्हाट्सएप करके आप प्राप्त